ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। हिंदी हिंदी हिंदी। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग भागवत महापुराण से पढ़ेंगे छठम स्कंद अध्याय 13 और 14। अध्याय 13 के श्लोक संख्या 12 से आगे और 14 का श्लोक संख्या 1 जिसमें तात्पर्य दिया गया है। तो बोर्ड पर श्लोक संख्या 1 लिखा हुआ है, उसका पुनरावृत्ति करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री परीक्षित उवाच रजः तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवती कथम आसीता दृढ़ा मति। श्री परीक्षित उवाच रजः तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्तस्य पाप्मना नारायणे भगवती कथमासि दृढ़ामति। श्री परीक्षित उवाच रजः तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्तस्य पाप्मनः नारायणे भगवती कथमासि दृढ़ामति। श्री परीक्षित उवाच रजः तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्तस्य पाप्मनः नारायणे भगवती कथमासि दृढ़ामतिः। और कोई कोई नहीं पढ़ सकता है। माता जी ज श्री परीक्षित वाच महाराज परीक्षित ने पूछा रजः रजोगुण तमः तमोगुण स्वभावस्य स्वभाव वाला ब्रह्मन् हे विद्वान ब्राह्मण वृत्रस्य वृत्रासुर का पापमनः जो पापी था नारायणे भगवान नारायण में भगवती श्री भगवान कथम किस प्रकार आशीता थी दृढ़ा अत्यंत दृढ़ मति ही चेतना या भक्ति अनुवाद और तात्पर्य भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा हे विद्वान ब्राह्मण असुर रजो तथा तमोगुण से आविष्ट होने के कारण सामान्यतः पापी होते हैं तो फिर वृत्रासुर श्री भगवान नारायण के प्रति इतना परम प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सका। तात्पर्य इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी रजो तथा तमो गुणों से ग्रस्त रहता है किंतु जब तक कोई इन गुणों पर विजय प्राप्त करके सात्विकता के पद पर नहीं पहुंच जाता तब तक वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवद्गीता 7:28 में की है। एषाम् त्वन्द्वगतम् पापम् जनानाम् पुण्यकर्मणाम् ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम् दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों के पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो द्वंद्व रूपी मोह से मुक्त हो चुके हैं वे निष्ठापूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। चूंकि वृत्रासुर असुर था अतः भगवान को आश्चर्य महाराज को आश्चर्य हुआ कि वह परम भक्त का पद कैसे प्राप्त कर सका। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्जिन मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो इससे पहले का जो अध्याय है उसमें बहुत श्लोक है जिसमें तात्पर्य नहीं है लेकिन बड़ा सुंदर लीला है तो मैं सोचा कि उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। वही राधिका कनाई तो हम पिछले अध्याय के श्लोक संख्या 4 से शुरू करेंगे। यहां पर लड़ाई चल रही थी वृत्रासुर और इंद्र में। इंद्र वृत्रासुर को मारने में सब प्रकार से सक्षम थे। नारायण कवच की प्राप्ति थी विश्वरूप के द्वारा। उतना नहीं भगवान के आदेश से अश्विनी कुमारों को आगे कर करके इंद्र दधीचि के पास गए। दधीचि से उनका अस्थि लेकर के वज्र बनाए। यह वज्र बना था वृत्रासुर के वध के लिए। इंद्र जानते थे, सब देवता जानते, सब ऋषि जानते थे। सर्व प्रकार से संपन्न होने के बावजूद भी इंद्र वृत्रासुर को मार नहीं रहे थे। तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे लोग इंद्र से याचना करने लगे एकत्रित होकर के, अब मारिए, अब वृत्रासुर को मारिए। सब थर थर कांप रहे थे वृत्रासुर से। पीछे आप लोग सुन चुके हैं कि वृत्रासुर का जो आविर्भाव हुआ तो सब लोगों का जीना हराम हो गया था, सब लोग प्राण की रक्षा के लिए भगवान के पास भागे थे। अंग्रेजी में कहावत है, वंस बॉर्न ट्वाइस शाई। एक बार इंद्र को ब्रह्महत्या का चस्का भोग भोगना पड़ा था जब विश्वरूप को मारा था इंद्र, और भयभीत थे इंद्र। इंद्र बुद्धिमान है, स्वर्ग के राजा हैं, सत्गुण प्रधान है। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो किसी प्रकार से एक बार गलती हो जाए तो पुनरावृत्ति उसका न करे कम से कम। मूर्ख होते हैं, गलती हुआ फिर वही करते रहेंगे, पुनः पुनश्चर विचरवाणा नाम, उसे में लगे रहेंगे। तो इंद्र दो कारणों से विश्वरूप को नहीं मारना चाहते थे। एक कारण कि विश्वरूप त्वष्टा के पुत्र थे, वृत्रासुर त्वष्टा के पुत्र थे जैसे विश्वरूप थे ब्राह्मण। दूसरा, वृत्रासुर महान वैष्णव है, जिस बात को इंद्र जानते थे। लड़ाई के मैदान में किस प्रकार से लड़ाई हो रही थी और वहां पर जो वार्ता हुई इंद्र और वृत्रासुर में, जिसको आप सब लोग सुन चुके हैं, वो कृष्ण कॉन्शियस डिस्कशन था। और इंद्र सब कुछ छोड़ दिए थे, कह के नहीं नहीं अब वैष्णव का मैं हत्या नहीं कर पाऊंगा। भगवद गीता में बताया गया है कि लड़ाई करने में गुस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, बल इंपॉर्टेंट है लेकिन बल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुस्सा। जब तक से गुस्सा नहीं आएगा, बल रहते हुए व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। गुस्सा आना बहुत जरूरी है। जब प्रेम हो जाएगा तो लड़ाई कहां से होगी। वृत्रासुर के प्रति इंद्र को प्रेम हो गया था, हो भी क्यों ना, वृत्रासुर भगवान के महान वैष्णव भक्त हैं। उनका उद्गार हम लोग पीछे के अध्याय में सुने हैं, अयम हरे तो पादैकमूलम दासानुदासा भवितास्मि भूय मनास्मरेता सुपते गुणास्ते गृणवाक कर्म करो तुकाया। यह वृत्रासुर का उद्गार, जहां कहते हैं अयम हरे तो पादैक मूले, हे प्रभु भवितास्मि भूय, यदि बार बार मुझे जन्म लेना पड़े उसका कोई परवाह नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। भले जन्म मिले लेकिन जब भी जन्म मिले तो मैं आपका दास बनूं। भगवान चेतन महाप्रभु यही कहते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहे चुकी तो। मैं आपका दास बना रहा हूं, मन से सदैव आपका चिंतन करता रहूं, अपने वाणी से आपका गुणानुवाद करता रहूं और कर्म से आपके लिए कुछ मैं काम करूं। करो तू काया, काया से शरीर से कुछ आपके लिए, यानी मन सा वाचा कर्मणा तीनों आप में लगा रहे। तो मानो भगवान कहते हैं, नहीं नहीं तू इतना भक्ति किया है, तुमको तो ध्रुव के समान अमर लोक मिलना चाहिए। कहते नौना कपृष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनार्भवम वा समंजसत्वाभिरहीय कांक्षे, विप्रलंबा भक्ति को मांग कर रहे हैं। एक होता है मिलन और एक होता है विरह। मिलन में छूटने का डर रहता है, लेकिन विरह में मिलने का आनंद बना रहता है। जैसे ब्रज की गोपियां, उन्हें भी प्रलंबा भाव था कि कृष्ण से मिलन कब होगा, यह सर्वश्रेष्ठ भाव है। वही भाव कहते हैं समंजसतम विरहीय कांक्षे, हे भगवान एकमात्र कांक्षा एकमात्र अभिलाषा है कि आपका ये विरह भाव है वह मुझ में प्राप्त हो। कहते न नाक पृष्ठम, मुझे ध्रुवलोक नहीं चाहिए, न चपारम इष्टम, न तो ब्रह्मलोक चाहिए, न सार्वभौमम, न तो समस्त पृथ्वी का राज चाहिए, न चरथाधिपत्यम, न बलिक महाराज के समान मुझे रसातल का अधिपत्य चाहिए, न योग सिद्धि, न पुनर्भवम वा, मुझे योग सिद्धि और मुक्ति भी नहीं चाहिए। यदि चाहिए तो विरह की भावना, कैसी विरह की भावना, उसका वर्णन कहते हैं। कहते हैं अजात पक्ष युवमातर खगा सन्य यथा वस्तरा क्षुधार्थ प्रियम प्रियव व्यसितम विष्णुरा मदोर बिंदा चीक्षते ताम विरह। देखिए अयात पक्ष, वह पक्षी अजात जन्मा न हो, पक्ष मतलब पंख, जिस पक्षी का पंख न जन्मा हो, अपने घोंसले से बाहर दिन भर बेचारी रहती है, लेकिन शाम को अपने मां के लिए घोंसले से बाहर का चू 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 करने लगती है, उसमें विरह भावना है, मां का विरह भावना है। मां तरो खगा, अपने मां के लिए जिस प्रकार से खगा पक्षी का छोटा बच्चा जिसका पंख न उत्पन्न हो, मां के लिए बाट जोती है। फिर सोचते हैं कि यह भी ठीक उदाहरण है, विरह का उदाहरण ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें स्वार्थ है। वो क्यों ढूंढ रही है, क्योंकि मां आएगी तो मुझे कुछ खिलाएगी। मां क्या करती है, पक्षी कीड़ा मकोड़ा या भोजन बच्चों के लिए लाती है, अपने मुंह में लाती है और अपने बच्चे के मुंह में डाल देती है, केवल ट्रांसफर करती है। यह भी ठीक प्रेम है, लेकिन उतना प्रगाढ़ नहीं है, यह भी ठीक नहीं है। अस्तन्यथा वस्त तरा क्षुधार्थ, ये ठीक नहीं है। तो अच्छा क्या है, जिस प्रकार से गाय का छोटा बछड़ा वस्त, गाय का छोटा बछड़ा बेचारा दिन भर खूटे पर बंधा रहता है, जब शाम होता है मां को आने का समय होता है तो उठ करके खूटे के चारों तरफ खूब परिक्रमा करता है। क्यों, मां का वो प्रतीक्षा करता है, विरह, मां से मिलन की उसे इच्छा होती है। दोनों में कामना है, पक्षी का जो बच्चा है छोटा उसमें भी कामना है कि आम मां आकर कुछ देगी, और गाय का बच्चा है उसमें भी कामना है, लेकिन दोनों को कामना में अंतर है। जो पक्षी है अपने मुंह से ला करके बच्चे के मुंह में डालती है, लेकिन जो गाय है वो हरी हरी घास चरती है और उसको ट्रांसफॉर्म करती है दूध के रूप में। कहें अस्तन्य यथा वस्तु तरा क्षुधार्थ, क्षुध अर्थ पेट भरने के लिए वो क्या करती है, दूध के रूप में बच्चे को देती है। फिर कहते हैं कि लेकिन दोनों में तो कामना है, ये ठीक नहीं है। कहते हैं प्रियम प्रियव विषतम विष्णा, जिस प्रकार से एक प्रिय, एक पत्नी जो है उसका प्रिय पति कहीं विदेश में चला गया हो, व्यवसितम घर से जो बाहर हो, उसके लिए दुखी मन से उसके मिलन के लिए कामना करती है और सोचती रहती है कि पति आएंगे तो उनके लिए मैं ये करूंगी, उनका पास संभान करूंगी, उनके लिए भोजन बनाऊंगी, सया बनाऊंगी। जय श्री श्री निताय गौर निताय की जाय। श्री श्री अदरास बिहारी ललता विशाखा जो की जाय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जाय। तो उसमें कामना भरी रहती है, पति से आने से पहले पति के सेवा की कामना बनी रहती है। हम लोगों का स्वरूप है सेवा करना। कहते हैं मना और अरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम, हे प्रभु, हे कमल नित्र, हे कमल नयन, मेरी एकमात्र इच्छा है कि आपका मैं दर्शन कर पाऊं। यह है विप्रलम भाव। तो यह सब बात और अंत में कहते हैं ममुत तमश्लोक जनेशु सख्य संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी आत्मजदारगे हैं आसक्त चीतस्य ननाथ भूयात। हे भगवान, अब संसार में आना चाहता हूं तो पत्नी पुत्र और परिवार में आसक्त रह करके संसार का दुख नहीं भोगना चाहता हूं। मम उत्तम श्लोक जनी सुसख्यम, यदि दोस्ती हो भी तो हे भगवान उत्तम श्लोक, आपके जो जन हैं, आपके जो भक्त लोग हैं, उन लोगों के साथ में संगति प्राप्त हो। तो यह सब बात इंद्र सुने थे, वृत्रासुर के उद्गार को इंद्र जानते थे, इसीलिए इंद्र भयभीत हो रहे थे वृत्रासुर को मारने में। इंद्र को बड़ा डर था। इंद्र समझते थे कि वृत्रासुर कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, ये वैष्णव है। हम लोग जानते हैं दुर्वासा मुनि के संबंध में कि कैसे अम्बरीश महाराज के चरणों में उन्होंने अपराध किया था तो कोई क्षमा नहीं कर पाया, कोई क्षमा यहां भगवान विष्णु तक क्षमा नहीं कर पाए। तो वैष्णव अपराध को वर्णन किया गया हाथी माता, मैड एलिफेंट, वैष्णव के चरणों में अपराधी। तो इसलिए ये लोग कह रहे थे, तो इंद्र स्पष्ट कह दिए कि आप लोग तो कह रहे हैं कि आप वृत्रासुर को मार डालो, सर्व समक्ष हो वृत्रासुर को मारने में, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है कि वृत्रासुर है कौन। इंद्र ने कहा कि बाप रे, अब एक बार गलती हो गई थी, एक वैष्णव का और ब्राह्मण का गलती मैंने कर दिया था, विश्वरूप को मार दिया था। किसी प्रकार से स्त्रियां जल वृक्ष और भूमि हमारे पाप को बांट ली, अब मैं पुनः वैसा काम नहीं करूंगा। तो ब्राह्मणों ने उनको प्रोत्साहित किया और कहा चिंता मत कीजिए, आपसे हम लोग यज्ञ करा देंगे, क्योंकि भगवान का नाम सब कुछ को पवित्र करता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्त कतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सभ्यांतर शुचि। कहते ब्रह्महा पितृहा गोद्धो मातृहा आचार्य हा अगवान इत्यादि इत्यादि कह करके कहते हैं यश वापी शुद्धेन यस्य कीर्तनात्। सब कुछ को शुद्ध कर देता है भगवान के नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम गोविंद नल कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन जो है सब कुछ को पवित्र कर देता है। इस प्रकार से जब ब्राह्मणों ने आश्वासन दिया तो ब्राह्मण शुद्ध थे, सत्गुण प्रधान थे, अन्य देवता लोग थे, ऋषि लोग भी थे, तो इंद्र को उनमें आस्था थी। और इस प्रकार से इंद्र ऋषियों के वचनों से प्रोत्साहित होकर के और वृत्रासुर को का वध कर दिए। जब वृत्रासुर मारे गए तो जैसा कि होना था ब्रह्महत्या उनके पीछे पीछे आना शुरू किया। तो हम लोगों ने अब तक से श्लोक संख्या 11 तक पढ़ा। तयेन्द्र अस्माद ताप निवृतम निवृत्ति न अमम अविशत हरिमनंत वाच्यातम प्राप्त सुखंत पिनो गुण। सब लोग खुश थे, वृत्रासुर मारे गए, सब देवता ऋषि सब लोग खुश थे, लेकिन एक व्यक्ति दुखी था और वे थे इंद्र जिन्होंने मारा था। सब लोग खुश थे, इंद्र को स्वर्ग का राज्य तो था ही, अब कोई संकट नहीं था इंद्र के ऊपर और अकंटक राज्य भोगने के लिए तैयार थे, लेकिन सबको आनंद था लेकिन इंद्र को दुख था। उन्हें भय था और भय किस चीज का था? भय किस चीज का था? इंद्र को सोएगा तो कैसे मालूम होगा? इंद्र को भय किस चीज का था? ब्रह्म हत्या का, और वही हुआ जो उनको भय था। ताम ददर्शा अनुधावंती चंडालम इव रूपिणीम जरया जरया वेशमान अंगिम यक्षम ग्रस्ताम सिस्पटाम विकीर्यपलिताम केश तिष्ठ तिष्ठेसि भाषिणी मीनगंध्य अशुगंधेन कुर्वन्ती मार्गदूषणम्। जिस चीज का इंद्र को भय था वही सामने आया। ताम ददर्शान, इंद्र भली प्रकार से सोच समझ करके ददर्श, दर्श ही नहीं ददर्श, उसका मूल भाव समझ करके, उसका वेट समझ करके, उसके ग्रीवेंसेज को समझते हुए इंद्र क्या देख रहा है? धावंती चंडालम इव रूपिणी, चंडाल स्वरूपिणी, नीच जाति की एक स्त्री, ए पापमयी थी। और वह कैसी थी? जराया बेपमान अंगिम, वो बुढ़ापे को प्राप्त की थी, श्वेत वस्त्र धारण की थी, अश्रिक प्रणाम, और जो उसका श्वेत वस्त्र था वह उसे क्षय रोग हो गया था। क्षय रोग मतलब टीबी, जब टीबी हो जाता है तो मुंह से खून निकलता है। पहले आजकल तो दवाई हो गया है बहुत ना, पहले टीबी बहुत खतरनाक बीमारी था, जीने का सवाल नहीं था। किसी को टीबी हो गया तो कोई उसके सामने नहीं जाता था, अछूता व्यक्ति हो जाता था वो। एक गोस्वामी है वृद्धज गोस्वामी, उन्होंने वर्णन किया है कि जो क्षयग्रस्ता जो टीबी हुआ था और अश्रिपटाम उसका जो श्वेत वस्त्र था, बुढ़ापे में प्रायः लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। आप लोग जानते हैं इस बात को। उसके पीछे एक इंपॉर्टेंस है श्वेत वस्त्र धारण करने का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करना मात्र फैशन नहीं है, उसके पीछे कुछ और चीज है। वो वस्त्र जो है उसका उपमा शरीर से दिया गया है, जैसे भगवान कहते हैं वान सान सिंजरानी यथा विहाय, शरीर का उपमा दिए हैं वस्त्र से। वैसे ही वो जो वस्त्र है वे श्वेत है, इसका मतलब यह है कि शरीर जो है यानी जो इंद्रियां हैं वे श्वेत होनी चाहिए। श्वेत का मतलब भगवान के चरणों में लगा होना चाहिए, संसार में नहीं लगा रहना चाहिए।
संसार में मन का लगना, इंद्रियों का लगना मतलब कलुषिता, कपट, छल, चीटिंग, जो भी संसार का जो चीज है जो देखते हैं हम लोग, जितने अवगुण हैं संसार के, यानी बुढ़ापे के समय इस अवगुण से व्यक्ति को परे हो जाना चाहिए, श्वेत वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। श्वेत वस्त्र धारण करने का मतलब कि पत्नी, पुत्र, परिवार, समाज में लगाव न रहे। कहां लगाव रहे? भगवान में। वो हुआ श्वेत वस्त्र धारण करना। तो जराया ये बुढ़ापा को प्राप्त की थी, और बुढ़ापा का पहचान है श्वेत वस्त्र धारण करना। लेकिन इसे क्षय रोग हुआ था। क्षय रोग होने के चलते वो वोमिट कर रही थी ब्लड का, और वह ब्लड जो था उसके श्वेत वस्त्र पर गिर रहा था। बुढ़ापे में सब कुछ श्वेत, बाल भी श्वेत हो जाता है, कितना भी बाल काला करो लेकिन मानने वाला नहीं है। बाल भी श्वेत हो जाता है, शरीर के सब बाल, सिर के ही बाल नहीं, रूंगटे भी श्वेत हो जाते हैं। ये कुछ प्रमाण देते हैं कि हम लोगों का इंद्रिया भगवान में 100% लग जाए, श्वेत हो जाए। इंद्रिया श्वेत हो जाना मतलब भगवान में लग जाए, अन्य संसार के किसी वस्तु में ना लगे। लेकिन श्वेतपना में भी यदि कोई कलर आ जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो उसका श्वेत वस्त्र पर क्षय रोग के चलते ब्लड आ रहा था, और गोस्वामी कहते हैं कि जो ब्लड था उसका जो गंध था, जैसे स्त्रियां रजस्वला में होती है, रज का जो गंध होता है, यानी पाप था, घृणामय था। और बिकीर्य पलिता केशम, श्वेत वस्त्र था लेकिन बिखरा हुआ था। और इंद्र कहती है तिष्ठ तिष्ठति भाषिण, रुको ठहरो ठहरो, ऐसा कहते हुए इंद्र के पीछे दौड़ रही थी। इस वाक्य को अपने मनस्पटल पर चित्रित कीजिए। एक स्त्री है जिसका शरीर के समय समस्त जो केस हैं, बाल हैं, वो श्वेत हो चुके हैं, श्वेत वस्त्र भी धारण की है, उसे क्षय रोग है और ब्लड खून मुंह से फेंक रही है, और इंद्र से बोल रही है रुको रुको तिष्ठ तिष्ठ इति भाषिणम, बोलती है रुको रुको ठहरो ठहरो, इस प्रकार से कहते हुए जब इंद्र के पीछे आ रही थी। तो यहीं तक नहीं है, तो बड़ा घिनावना दृश्य था ही, बुढ़ापे में ऐसे भी सब अंग प्रत्यंग विकृत हो जाते हैं, दांत टूट जाता है, आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, और जो चमड़ा जवानी में चमकता है उसमें झुलियां पड़ जाती है, और उसमें भी खून वोमिटिंग कर रही हो, और उतना ही नहीं, क्या कह रही है, जब कह रही थी रुको रुको, तो जब मुंह से सांस निकलता था तो मीन गंधी असुगंधे न, मीन गंधी मीनवत यानी मछली के समान दुर्गंधित गंध आता था। आजकल में मछली के गंध क्या खराब गंध है, ठीक तो है, लहसुन प्याज का गंध क्या खराब है, ठीक तो है, लेकिन हम लोग जब सुनते हैं तो वोमिट हो जाएगा। तो ये सप्तगुणी लोग थे, भागवतम में लोग मछली नहीं खाते थे, उस समय के लोग लहसुन प्याज नहीं खाते थे, तो मीन गंध मछली का गंध बड़ा दुर्गंधित माना जाता है। कहते हैं मीन गंधी असुगंधे न, मछली के समान दुर्गंध, असुगंध मतलब दुर्गंध। और जब वो जा रही थी, वोमिट कर रही थी मुंह से खून, तो मार्ग दूषिण, मार्ग को दूषित करती थी उस खून से, और मार्ग से आने वाले हवाओं को दूषित करती थी उसे जो गंध निकलता था उस गंध से। तो इंद्र के इस पाप का, जो पाप स्वरूपणी जो स्त्री थी उसका वर्णन यहां पर किया गया है। अब इंद्र चले भाग देख करके, नभो गतो, आकाश में गए, वहां भी देखे कि वो पीछे पीछे आ रही है। दिवा सर्वा, दसों दिशाओं में गए, वहां भी देखे कि वो आ रही है। नवोगतो दिशा सर्वा सहचाचो विषाम बने, हे महाराज परीक्षित, सहस्त्र आंख वाले ये इंद्र उस चंडालिनी स्त्री से अपना रक्षा करने के लिए सर्वत्र गए, लेकिन कहीं उन्हें शांति नहीं मिला। तब कहां गए? प्राक उदिचिन दिशम तुरुणम प्रविष्टो नृपमानसम, हे महाराज परीक्षित, प्राक उदिचित दिशा में गए, यानी उत्तर और पूरब के कोने में। उत्तर और पूरब का जो कोना है वह भगवान का कोना है, वहां पर तो वहां पर मान सरोवर में जाकर के और इंद्र शरण लिए मान सरोवर में। वस्तु शास्त्र में बताते हैं कि कौन किसका कोना है, ऐसे पूरब और दक्षिण जो है वो अग्नि कोण है, पूरब और उत्तर जो है वो भगवान का स्थान है। तो यानी भगवान का शरण लिए जा करके, तो कोई किसी प्रकार से भगवान के शरण में ज्यादा शांति मिलती है। और वहां पर मान सरोवर में जा करके सह आवस पुष्करणाल तंतु, वहां पर कमल के फूल खिले थे और कमल फूल के तंतु या कि कमल नल के तंतु के जाल में इंद्र प्रवेश किए। जल में भी नहीं, कमल मतलब सब प्रकार से अपने को सिक्योर करना चाहे उस ब्रह्महत्या के पाप से जो जला रहा था इंद्र को। इंद्र जल रहे थे एक तरह से। तो इंद्र कमल नल के तंतु में प्रवेश किए। नलब दभोगो यद अग्निदूत, पुअर इंद्र जो स्वर्ग के राजा थे, 56 भोग खाने वाले थे, वहां पर वर्षाणी सहस्त्राणी स्वर्गीय वर्ष के अनुसार 1000 वर्ष तक अलक्षितो अंत, किसी के द्वारा देखे नहीं गए, उस कमल नल में 1000 वर्ष तक निवास किए। और उनको खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा था, वहां पर बिना खाए पिए निर्जल एकाशी कर रहे थे वहां पर। कहते न लब्ध भोगो, न लब्ध प्राप्त नहीं होता था क्या भोग, खाने पीने का वस्तु। क्यों? कि यह अग्निदूतम, क्योंकि अग्नि पानी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो अग्नि के दूत पानी में प्रवेश नहीं कर सकते थे और ये अग्नि से भोजन प्राप्त करते हैं देवतागण। आप लोग जानते होंगे कि जब ब्रज में वो यज्ञ हो रहा था, सब नंद बाबा तैयारी कर, गोवर्धन पूजा आ रहा है ना, तो नंद बाबा तैयारी कर रहे थे किसके लिए? इंद्र का पूजा के लिए, क्योंकि अग्नि के द्वारा इंद्र अपना भोजन प्राप्त करते थे। तो भगवान ने कहा कोई जरूरत नहीं है, अब हम गिरिराज का पूजा करेंगे, इंद्र का पूजा नहीं करेंगे। तो वही कहते हैं नलब्ध भोगो यदाग्निदूत, अग्नि के दूत लोग इंद्र को भोजन पहुंचाने के लिए उस जल में नहीं जा सकते थे, क्योंकि जल और अग्नि का दोस्ती नहीं है, वायु और अग्नि का दोस्ती है लेकिन जल से दोस्ती नहीं है। तो वहां पर 1000 वर्ष तक रह कर करके और बेचारे रिपेंट किए, संचिंतयन ब्रह्म क्षम ब्रह्म बद्ध जो हुआ, ब्रह्म हत्या जो किए थे उसका, उसके लिए रिपेंट कर रहे थे और उसे मुक्ति के लिए कामना कर रहे थे। तो प्रश्न उठ सकता है कि जब उस समय इंद्र जब यहां पर आ गए थे स्वर्ग लोक में क्या हो रहा था, कोई राजा होना चाहिए, नहीं तो असुर लोग तुरंत इनो चढ़ाई कर लेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तावत त्रिणाकम नहुसम सुशासन विद्या तपोजोग बला अनुभाव सपदेश्वर मदान्ध बुद्धि इतस्तिम गतिम इंद्र पत्निया। उस समय महाराज नहुस जो कि बहुत प्रतापी राजा थे, महाराज नहुस अपने शिक्षा तपस्या जोगबल के द्वारा उनको स्वर का राजा बना दिया गया, सुशासह वो शासन करने लगे स्वर का। तो स्वर के राजा थे, तो स्वर की रानी जो है इंद्र की पत्नी है वो है सची, तो ये टेम्पोरली वहां पर अपॉइंटेड की गए थे, न कि वो स्वर के राजा थे, टेम्पोररी रहा गया था। तो अब मद उन्हें प्राप्त हुआ, संपत्ति का ऐश्वर्य का मद से चूर होकर के, और वे कामी बन गए और इंद्र पत्नी नीतः तिरस्याम गत इंद्र पत्निया, उन्हें इंद्र पत्नी के प्रति काम भावना उत्पन्न हुई और कामातुर होकर के इंद्र पत्नी सची को के साथ में सहवास करने का प्रस्ताव रखे। सची से कहे कि अब मैं इंद्र हूं, मैं यहां का राजा हूं, तो तू मेरी पत्नी हो, इसलिए तू मेरे साथ सहवास करो। इंद्र सती हैं, उन्हें समझ में नहीं क्या करूं, उसके पति यहां कमल नल में छिपे हुए हैं, असहाय अवस्था में भोजन भी नहीं मिल रहा है, तो ऑलरेडी उनको दुख है। और दूसरा दुख कि नहुस जो वहां के राजा थे उनका धर्म था सती का रक्षा करना, लेकिन वे उस पर कुदृष्टि डाले। तो भागते भागते वे ऋषियों के पास गई और ऋषियों से प्रार्थना किया, मैं ऐसे परिस्थिति में क्या करूं। तो ऋषियों ने कहा कि देखो नहुस आज कमातुर है, काम वासना में सही क्या है गलत क्या है दिखाई नहीं पड़ता है, तुम उसको बोलो कि यदि तुम मेरा सहवास चाहते हो तो ब्राह्मणों के द्वारा जोते हुए पालकी में बैठ करके आओ, तुम मेरा सहवास कर सकते हो। तो सची वैसा ही सलाह नहुस को दी कि यदि तुम चाहते हो मेरा सहवास करना, मुझे भोगना चाहते हो, तो ब्राह्मणों के द्वारा जोते हुए पालकी में, यानी उस पालकी को ब्राह्मण ढोकर के ला रहे हो, उस पर तुम बैठ करके आओगे तो मेरा सहवास कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा पाप था सोचना भी, लेकिन कामातुर व्यक्ति जब कामंद हो जाता है, चाहे वो स्वर का राजा हो चाहे हरे कृष्णलैंड के ब्रह्मचारी हो, कोई हो, वो व्यक्ति नहीं सोचता है कि हमारे गुरुजी क्या सोचेंगे, अथॉरिटी क्या सोचेगी, और लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, काम हित हित ज्ञान नहीं, कैसे है, काम ये स क्रोध है ये स रज गुण समुद व, नहीं ये भी नहीं, नहीं 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 वो भी नहीं, दूसरा अध्याय का हाँ, ध्यायतो विषयान पुंसा संग संयुपजायते संगा संजायते कामात कामात क्रोपजायते क्रोधाभवती सम्मोह सम्मोह स्मृति भ्रम स्मृति भ्रम बुद्धिनाशा बुद्धिनाशा प्रसति। तो इनका बुद्धि नष्ट हो चुका था कामना के चलते, बुद्धि नष्ट हो चुका था। तो ब्राह्मणों के द्वारा जोते हुए पालकी पर बैठे राजा थे, ब्राह्मणों को बोले हाँ ठीक है महाराज ढो लेंगे क्या करेंगे। तो एक दो गलत वही था, अब इतने काम आतुर थे, सती से मिलने के लिए इतने आतुर थे कि दो चार पांच मिनट रुक नहीं सकते थे, कि जल्दी ले चलो। तो उनके पास चाबुक था, जैसे घोड़े को मारते हैं ना, तो उसे ब्राह्मणों को मारते थे, कहते सर्प 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 जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो ब्राह्मणों को गुस्सा, बदमाश कहें का सर्प 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 बनना चाहते जाओ तुम सर्प बन जाओ। इसे कहते हैं मदंध अंधा हो गया था, नीत तिरश्याम गतिम इंद्रपत्न्या, उसने तिरश्चम गति को प्राप्त किया यानी सर्प गति को प्राप्त किया, क्योंकि सर्प सर्प कह रहा था तो साहब जाओ तुम सर्प बन जाओ। तो अही महाराज नहुष सर्प बन गए। और जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे तो उस समय द्रौपदी के लिए एक कमल का फूल लाने के लिए भीम जा रहे थे केदली वन में, और महाराज नहुष जो सर्प के रूप में थे उनको पकड़ लिए थे। बाद में युधिष्ठिर आए और संवाद हुआ, नहुष और उनका संवाद हुआ, तब उनका मुक्ति हुआ। महाभारत में यह कथा आता है। इस प्रकार से अब नहुष का बहुत जल्दी राजा बने और जल्दी पतित होकर के सर्प बन गए। इधर इंद्र वहां पर ब्रह्महत्या के पाप से, जैसे कभी कभी सुनने में आता है कोई साधु बेचारा जेल में चला जाता है, क्या करें जेल में जाकर, कहां भगवान का नाम लेंगे और क्या किताब लिखेंगे, भगवान का नाम लिखेंगे। तो वैसे ही इंद्र एक तरह से जेल में थे, लेकिन अपने पाप पर पश्चाताप कर रहे थे, ब्रह्म बधा विमोक्षण और मुक्ति के लिए जो साध्य था वो कर रहे थे, यानी भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान विष्णु का वह कोण था और भगवान विष्णु की संगनी है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी सबको पवित्र करती हैं। तब जब विष्णु का सेवा हो, तब यदि विष्णु को न माने और केवल लक्ष्मी जी को माने तो उस व्यक्ति को लक्ष्मी जी डुबो देती है, लेकिन विष्णु के साथ में जो रहता है लक्ष्मी जी उसको पवित्र करती है। ततो गतो ब्रह्म गिरोपहूत ऋतम ऋतम भरम ध्यान निवारितम अघ, लक्ष्मी जी भरण पोषण कर रही थी इंद्र का वहां पर, क्योंकि इंद्र भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे, भगवान का नाप ले रहे थे। पापस्तु दिग्देवता देवतया हतो जौ, उत्तर दिशा के जो देवता हैं भगवान शिव, पाप जो था मानो लक्ष्मी जी ने रिक्वेस्ट किया भगवान शिव से कि इंद्र का पाप आप ग्रहण कर लीजिए। अच्छा चीज भगवान लेते हैं, खराब चीज भगवान शिव ले लेते हैं, जैसे विष पान करना हुआ तो अभी उसमें विष पान कर लिए, वैसे ही पुतना वध में पुतना का दूध भगवान पिए लेकिन विष भगवान शिव पिए, ठीक वैसे ही यहां पर लक्ष्मी जी जिनका रक्षा कर रही हो, भक्तों को वास्तव में रक्षा करती हैं लक्ष्मी जी। तो इंद्र का जो पाप था, पाप तू तू मतलब सर्टेनली निश्चय, दिग्देवता उत्तर दिशा के जो देवता हैं भगवान शिव, वे हतौजह उसको पाप को छिन्न कर दिए, खत्म कर दिए। तम ना विभूत वितम विष्णु पत्न्या, और यह सब हुआ, यह रक्षा का काम हुआ विष्णु पत्नियां, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी के द्वारा। अब इंद्र शुद्ध हो गए, अब इंद्र शुद्ध होकर के मान सरोवर से बाहर आए। तम चा ब्रह्मर्ष्य अभ्येत हयमेधने भारत यदा वदीक्षा चक्र पुरुषा आराधने नह। इस प्रकार से ऋषियों ने उन्हें हयमेधे न अश्वमेध यज्ञ कराया, और अश्वमेध यज्ञ से पुरुषा आराधने न ही चक्रु यानी इंद्र जो थे, पुरुषा आराधन भगवान की आराधना करने से बिल्कुल पवित्र हो गए थे, शुद्ध हो गए थे। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से कभी कभी आकाश में बादल छा जाते हैं, कुहासा छा जाता है, नितनैतीन शून्याय निहार यो भानुना, जिस प्रकार से कुहासा को भानु यानी सूर्य छितिर बितिर कर देते हैं, ठीक वैसे हैं ऋषि लोग यज्ञ करा करके और इनके पाप को इतर बितर कर दिए, छितिर बितर कर दिए। और ये लोग ऑर्डिनरी ऋषि नहीं थे, यहां पर मरीचि इत्यादि लोग थे। अब उसके बाद में ये श्लोकों में दो श्लोक 22 और 23 में वर्णन किया गया इस प्रकार। इस आख्यान में भगवान नारायण के महिमा का वर्णन है, भक्ति योग की महानता के संबंध में विचार व्यक्त हुए हैं। इंद्र तथा वृत्रासुर जैसे भक्तों का वर्णन हुआ है, तथा पापी जीवन से इंद्र के मोक्ष एवं असुरों के साथ लड़े गए युद्धों में उनकी विजय के संबंध में विवरण किए गए हैं। इस आख्यान को समझ लेने पर सभी पाप बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। विद्वानों को सलाह दी जाती है कि इस आख्यान को पढ़े, जो ऐसा करेगी उसकी इंद्रियां तीक्ष्ण होंगी। यहां पर अनुवाद कुछ और है, लेकिन यहां पर बताया गया है, पठे दु आख्यान इदम सदा बुधा श्रवंत अतंतो पर्वणि पर्वणि इंद्रिय। पर्वणि पर्वणि, जब भी कोई घर में पर्व हो तो सत्यनारायण का कथा न कह कर करके ये इंद्र और वृत्रासुर के आख्यान का कथा करना चाहिए। मैं कानपुर में था तो हमारे कुछ भक्त लोग हैं, तो वो बेचारे भक्त हैं लेकिन उनकी स्त्रियां अभी भी संसार की हैं। तो अभी कुछ दिन ये हुआ था, क्या बोलते हैं चलनी में देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, करवा चौथ। तो मैं कहा ये नया नौकरदंगी क्या हो गया, ये करवा चौथ करने की जरूरत क्या है। और हमारा एक भक्त है जय गोविंद, वहां पर करवा चौथ का कथा उन लोगों को सुना रहा था। तो मैं कहा मूर्ख कहीं, क्या तू ये क्या कर रहा है। भागवतम में कहा गया कि ऐसा पर्व कभी आए तो वृत्रासुर और इंद्र का जो व्याख्यान है उसको पढ़ना चाहिए। यहां पर श्रवन्ति यथा पर्वणि पर्वणि इंद्रयः इंद्रियम धन्य यशस्यः निखल अघमोचनम। धन धान प्राप्त होगा, जश प्राप्त होगा, विभिन्न प्रकार के पाप, निखिल अघ बहुत ज्यादा से ज्यादा पाप वो भी मोचनम इसे खत्म करेगा। रिपु जय शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी, और स्वस्तन्य तथा आयुष सब जगह ख्याति मिलेगी और आयु की वृद्धि होगी। तो यह काम करना चाहिए। एक करवा चौथ क्या पढ़ रहे हो, और वैसे भी मैं क्या करवा चौथ का मतलब क्या होता है, है? तो कहता है कि पत्नी भुगती है अपने पति के लंबी आयु के लिए। तो मैं क्या उसे मृत्यु नहीं होगी क्या, अरे वैसे लंबी आयु से क्या फायदा जिसे भजन न हो। तरव किम जीवंती, वृक्ष तो लाखों लाख साल जीते हैं, वैसे वृक्ष का जीवन जीने से क्या फायदा, कम समय ही जियो और भगवान का भजन करो। और दूसरा बात कहते हैं चलनी में चंद्रमा को देखते हैं वहां पति दिखाई पड़ते हैं। तो मैं कहा अपने पत्नियों से पूछो, वो चलनी में चंद्रमा देखी थी पति दिखाई पड़े थे, दिखाई पड़े थे, जब नहीं दिखाई पड़े तो दिमाग क्यों खराब करने का है। ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कृष्ण का भजन कर लिए सब कुछ हो गया और कुछ करने की नहीं है। जिसको कृष्ण विश्वास नहीं वो मुड्डी मारते हैं। मैं देखता हूं हमारे भक्त लोग यहां पर शिव जी के मंदिर में जाते हैं, मंगला आरती यहां करते हैं, बाद वहां मुड्डी मारने जानते हैं। क्यों, क्या जरूरत है? कृष्ण का भजन करो और किसी का भजन करने की जरूरत नहीं है। 100 रुपये का नोट है तो सब नोट उसमें है, कृष्ण के सब आराधना करते हैं। जब कृष्ण का आराधना हम करेंगे सब देवता लोग साथ में रहते हैं, किसी की आराधना करने की जरूरत नहीं है। और यदि नहीं मन मानता है, करने का मन करता है तो कर लो, लेकिन कम से कम भागवतम का यह बात जरूर करो। श्रवंत यथा परवणि परवणि इंद्रियम, परवणि परवणि, जब भी कुछ पर्व आए, बड़े बड़े उत्सव आए, तो इंद्रियों को वश में करने वाला जो यह चरित्र है इंद्र और वृत्रासुर का, इसे पढ़ना चाहिए। इससे धन धान की प्राप्ति होगी, जश की प्राप्ति होगी, समस्त पापों का मोचन हो जाएगा, असुरों जो शत्रु हैं उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो, सर्वत्र ख्याति बढ़ेगी तथा नाम और आयुष लंबा उम्र, पति के लंबा आयु के लिए करवा चौथ करते हैं तथा आयुषम, लंबा आयु मिलेगा है? तो ये भागवत पढ़ना चाहिए सब प्रकार से, यह शास्त्र या भागवत के द्वारा अनुमोदित है। अब आज का श्लोक है, इसमें सिंपल चीज है। परीक्षित महाराज हम लोगों के लिए ये प्रश्न किए हैं कि वृत्रासुर तो असुर थे जो कि रजोगुण और तमोगुण में हमेशा आविष्ट रहते हैं, फिर नारायण में उनका इतना प्रगाढ़ प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ, भगवान में कैसे प्रेम हुआ उत्पन्न? प्रभुपाद तात्पर्य बताए हैं कि भगवान में प्रेम तभी उत्पन्न हो सकता है, भगवान का भक्ति तभी कोई कर सकता है जब ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जो सब प्रकार के पाप से वंचित तेषाम तंतगतम पापम, तू अंत, तू मतलब सर्टेनली दो राय नहीं है, अंतगतम खत्म हो चुका है, गतम मतलब खत्म हो चुका है, पापम सब प्रकार से जो पाप से पाप जिसका धूल गया हो, जो शुद्ध हो गया है, वही व्यक्ति द्वंद नूर ते द्वंद मोह निर्मुक्ता, वही व्यक्ति द्वंद से परे होगा। जब तक से व्यक्ति द्वंद में रहेगा भजन नहीं हो पाएगा। तो ये साधना भक्ति जो है वो हम लोगों को द्वंद से परे करता है। नए नए भक्त बनते हैं, कुछ समय रहते हैं, लेकिन द्वंद में रहते हैं। इस्कान में कितने लोग ज्वाइन करते हैं धन कमाने के लिए, कितने लोग अमेरिका जाने के लिए, सब द्वंद है। ये द्वंद है मन में, मतलब पूर्णतया विश्वास नहीं है कि भगवान हमारा पालन करेंगे। अवश्य राखीब कृष्ण विश्वास पालन। जब यह हो जाए कि कृष्ण जरूर हमारा पालन करेंगे, तब कहां अब जाएंगे? अब कहीं जाने का सब प्रकार से सब दरवाजे बंद हो जाए बाहर के, तब भजन कर सकते हो। जो दरवाजा खुला रहेगा बाहर का तो वो द्वंद है। तो भजन करने के लिए द्वंद मोह निर्मुक्ता, द्वंद और मोह दो चीज, इन दोनों से जो मुक्त हो जाएगा या द्वंद रूपी मोह से जो मुक्त हो जाएगा वही भजन कर सकता है। तो दो चीज, पाप खत्म हो जाए और द्वंद से परे हो जाए। तो ये जो वृत्रासुर है तो असुर खानदान का है, जो रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता जिनमें होती है, ये भगवान का शुद्ध भक्त कैसे बन गया, यही प्रश्न है। और इसका उत्तर महाराज चित्रकेतु कथा के रूप में बाद में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? माइक।
हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। ब्राह्मण लोग बोले थे इंद्र को कि आप ये कार्य करो और हम आपको बचाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो दिखता है कि वो मतलब जो उनको भोगना पड़ा हो, तो वो तो उससे कुछ ब्राह्मणों ने तो बचाया नहीं उनको।
नहीं, ब्राह्मणों ने कहा कि आप यह काम करो और हम लोग आपसे यज्ञ करा करके ब्रह्म हत्या से आपको मुक्त कर देंगे। तो उन्होंने किया,
लेकिन वो 1000 साल तो उनको भोगना पड़ा, तो फिर क्या?
देखिए, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा ना, कोई भी हो। लेकिन ये महान लोग दूसरों के कल्याण के लिए, क्योंकि वृत्रासुर के बस से बहुत लोगों का कल्याण हुआ, तो ये महानता है इंद्र की कि जानते हुए भी कि ब्रह्म हत्या लगेगा, लेकिन उन्होंने यह कार्य किया। वो जानते थे और स्पष्ट कर भी दिए थे कि भाई एक बार मैं गलती कर दिया हूं, अब नहीं करूंगा। लेकिन ब्राह्मण ने कहा चिंता मत करो, हम रक्षा करेंगे। तो उन्हें ब्राह्मण विश्वास था, और इस प्रकार से 1 साल तक भगवान का आराधना किए, तो आराधना करके शुद्ध हो गए। लेकिन जो पाप था वो खत्म नहीं हुआ था। पाप और पुण्य का ये मतलब नहीं कि हरे कृष्ण जप रहे तो पाप खत्म हो गया है, है? वो रहता है, पुण्य का अलग फल मिलता है और पाप का अलग फल, दोनों रहता है। लेकिन भक्त भजन करते 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 इतना पुण्य प्राप्त करता है कि वो पाप नगण्य हो जाता है, उसको लज्जा लगने लगती है, और हरि नाम जो है उसको भस्मसात भी कर सकता है। तो एनीवे, इंद्र चिंतन कर रहे थे भगवान विष्णु का, लक्ष्मी जी पालन कर रही थी, इस प्रकार से इंद्र शुद्ध हुए थे। लेकिन ब्रह्महत्या का पाप जो लगा था, उस पाप को नष्ट किए अश्वमेध यज्ञ करा करके ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया ताकि फिर ना आने पावे, हालांकि आता नहीं, यानी फिर इंद्र को वैसी इच्छा कभी ना हो जाए किसी ब्राह्मण को और हत्या न कर ले। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण, जैसा रावण वंश में जैसा विभीषण जन्म लिया था, वही तो भक्त था, लेकिन इसका विभीषण, इसका मन में रजोगुण तमोगुण नहीं था, सत्वगुण था, जैसा कि रावण को छोड़ के इसके भाई को छोड़ के चला गया, भगवान के पास शरण लिया। नहीं, भूतासुर ये तो जन्म से वैष्णव, फिर इसका मन में क्यों जो रजोगुण तमोगुण आया, तो सत्वगुण रहना चाहिए।
वृत्रासुर वास्तव में सत्गुण में ही है, इसीलिए तो परीक्षित महाराज का प्रश्न हुआ कि असुर लोग प्रायः रजोगुण और तमोगुण प्रधान होते हैं, लेकिन वृत्रासुर में सत्गुण कैसे आ गया, यही तो प्रश्न था। इसमें सत्गुण कैसे आ गया, इसमें रजोगुण, जैसे प्रहलाद महाराज उसमें उनमें तमोगुण रजोगुण नहीं था।
नहीं, जैसे प्रहलाद महाराज इसका कौन रजोगुण तमोगुण था क्या?
नहीं।
फिर
तो क्या, तो वही तो प्रश्न है, वही तो प्रश्न है महाराज। परिचित का प्रश्न वही है कि प्रायः असुर लोग रजोगुण और तमोगुण में होते हैं, लेकिन वृत्रासुर तो इतना अच्छा भक्त है, यानी वो कैसे हो गया, ये प्रश्न है कि वो कैसे हो गया, अभी भी समझा नहीं, अभी भी तो समझा नहीं। यही प्रश्न था उनका कि अरे बड़ा आश्चर्य की बात है कि असुर परिवार में लेने जन्म लेने के बाद भी सतगुण प्रधान रहे। तो भगवान के भक्त कहीं भी हो, जन्म लें कहीं भी, ये भगवान के भक्त हैं तो हमेशा कमल के फूल के समान, जो कीचड़ में जन्म लेता है कमल का फूल, लेकिन हमेशा पानी से भी ऊपर रहता है। तो कोई प्रश्न करो, अरे कीचड़ में जन्मा हुआ तो कीचड़ में होना चाहिए, ऊपर कैसे आ गया है? वैसे ही असुर परिवार में जन्मा हुआ भी सतगुण प्रधान है। एनीवे, यही प्रश्न है, इसका उत्तर आगे आएगा, आप सुनना, डेली कथा सुनो।
और एक ही प्रश्न है, अच्छा ये जो व्यासासन में बैठने के लिए भक्त के पास क्या क्या योग्यता और क्या क्या लक्षण होना चाहिए?
भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 6 पढ़ो।
प्रथम स्कंद
6-7 में वर्णन किया गया है। सुत गोस्वामी से प्रभाव ही शुड बी फ्री फ्रॉम द वाइसेज, 4 वाइसेज, नो मेडिटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो सेक्स आउटसाइड मैरिज, जो 4 नियम कम से कम पालन करता हो तो कृष्ण का भक्त हो। कैसे है? नहीं, मिसे चित्र से बाद में श्लोक नमिसे निमिष चित्रय ऋषि सन का दिया उसके बाद वाला पात्र उत्तराधना। शुद्ध गोस्वामी का गुणगान किए हैं निमिषरण के ऋषि लोग। क्या श्लोक मिला? हाँ हाँ, त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि चानघ अख्यातानपि धीतानि धर्मशास्त्राणि अन्यतः। त्वया मतलब तू, मतलब निसंदेह, त्वया खलु पुराणानि, निश्चय ही आप समस्त शास्त्रों को जानते हैं। त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि च अनघ, अनघ मतलब पाप से परे, आप पाप से परे हैं, समस्त वेद पुराणों का ज्ञान रखते हैं। आख्यातान अभिधीतानि, आपने सुना है और सुनाया है, इसलिए आप कथा कहने के योग्य है। तो कथा वही कह सकता है जो भागवत कथा अटेंड करता है। आख्यातान अभिधीतानि, जो सुनता है वही सुना सकता है, जो नहीं सुनेगा सुनाएगा नहीं। तो सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने सुना इसलिए मैं कह सकता हूं। राधा कुंड का वो कथा है ना मालूम, सब लोग दर्शन करने गए, प्रभुपाद जी सुनते रहे। तो सुनना, आख्यातान अभिधीतानि, सुनना और सुनाना। कितने लोग गीता पढ़ते हैं, गीता भागवत सब पढ़े, खूब ज्ञान प्राप्त करेंगे, पूरा श्लोक याद कर लेंगे, लेकिन प्रवचन नहीं कर पाएंगे, सुना नहीं पाएंगे लोगों को। सुनाने के लिए सुनना जरूरी है, ये सुनेंगे तब सुना सकते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोग रेडियो पर सुनते होंगे, वो सुनना सुनना नहीं हुआ, सुनने के लिए सामने बैठना चाहिए, क्योंकि वो केवल 35% सुन रहे हैं। सामने बैठने से 65% हाव भाव से पता चलता है।
जो हिंदी में क्लास होता है ना, आगे बढ़ता है तो इंग्लिश में होता है, मुझे समझ नहीं पाता, मैं पीछे बढ़ता है, इसलिए अच्छा तो क्या बोलेगा।
तो आप आगे बैठो, आप आगे,
महीने में 15 दिन ऐसे हिंदी में क्लास होना चाहिए, तो ये तो 2 महीना हो गए इंग्लिश में क्लास।
आप आगे बैठो। और कोई प्रश्न? यस, आप लोग ऑफ मत करो, माइक ऑन ही रहने दो।
हरे कृष्णा, ये इंद्र को ब्रह्म हत्या का भय हमेशा सताता था, और उसका कंपैरिजन फियर पर्सन ही पर चंडालिनी के दिया है, चंडालिनी का। वो चंडाल क्यों नहीं होता है? क्योंकि चंडालिनी देने से पूरा स्त्री वर्ग का डिग्रेड किया जैसे होता है।
मेरे पास उसका उत्तर नहीं है। नहीं,
कोई बात नहीं प्रभु। दूसरा एक प्रश्न है, ये राजा नहुषा है ना, वो ब्रह्मचारी राजा था क्या?
उसको भी मैं नहीं जानता हूं।
कोई बात नहीं प्रभु, हरे कृष्णा।
उनको काम वासना, ब्रह्मचारी पहले नहीं थे, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर उनके वंशज हैं, तो पहले गृहस्थ जरूर होंगे, वंश उनका चला है, युधिष्ठिर महाराज उन्हीं के वंश के हैं, तो तपस्या के द्वारा, योग बल के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त किए थे, पुण्य प्राप्त बहुत किए थे, इसलिए। ऑल राइट, विल स्टॉप हियर। ग्रंथराष्ट्र भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय।